الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. پہلے میں اپنے تمام سننے والوں کی خدمت میں ایک معذرت پیش کر دوں. یہ ٹائم درس قرآن کا ہے, تفسیر کا ٹائم ہے, اور کل قل اعوذ برب الفلق شروع ہوئی تھی, لیکن التبلیغ.com کے ناظم مولانا جنید صاحب نے آج کا دن ایک خاص پروگرام کا رکھا تھا, وہ میں گزشتہ کل اعلان کرنا بھول گیا تھا, تو آج اسی خاص پروگرام کے متعلق انشاءاللہ مجلس ہو رہی ہے, اور آئندہ کل پھر انشاءاللہ معمول کے مطابق قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی تفسیر کو آگے بڑھائیں گے. آج کی یہ مجلس ہے مکتب کا کامیاب استاذ کیسے بنے. سب سے پہلے تو یہ سمجھو مکتب کس کو کہتے ہیں. ہماری یہاں محلوں میں جو چھوٹے چھوٹے مدرسے ہوتے ہیں جس میں بچے گھر سے رہ کر پڑھنے آتے ہیں اور پڑھ کر کے واپس چلے جاتے ہیں, ایسے چھوٹے چھوٹے مقامی بستی اور گاؤں کے مدرسوں کو مکتب کہا جاتا ہے, اور اسی کی جمع اور بہوچن مکاتب کہلاتی ہے. ایک مسلمان جہاں کہیں بھی رہے, جہاں کہیں بھی رہنے جاوے, تو اس کو اپنا مکان بنانے سے پہلے سب سے پہلے تین چیزوں کی فکر کرنی چاہیے. ایک, نماز پڑھنے کے لیے مسجد بنا لیوے یا عبادت خانہ قائم کر لیوے. دوسرا, اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے چھوٹا مدرسہ مکتب قائم کر لیوے, اور تیسرا, مرحومین کو دفن کرنے کے لیے قبرستان کا انتظام کر لیوے. یہ جو ہمارے محلوں کے اندر چھوٹے چھوٹے مدرسے ہیں, گاؤں کے چھوٹے چھوٹے مدرسے ہیں جس میں بچے اپ ڈاؤن کر کے پڑھتے ہیں, آؤ جاؤ کر کے پڑھتے ہیں, یہ بہت اہم اور بہت قیمتی اور بہت ضروری ہے. اگر یہ بچے مکتب میں مدرسے میں جا کر دین کی تعلیم حاصل کر لیں گے, اپنے عقیدے کو ٹھیک کر لیں گے, اسلامی عقیدے سیکھ لیں گے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہو جائے گی، قرآن کی تعلیم ہو جائے گی، دین کی پرائمری بنیادی ضروری تعلیم ان کو مل جائے گی، تو انشاءاللہ ان بچوں کا ایمان محفوظ ہو جائے گا، اور انشاءاللہ یہ کبھی بھی مرتد نہیں بنیں گے۔ سمجھو کہ زندگی ایک عمارت ہے، ایک بلڈنگ ہے، اور یہ مدرسہ اور مکتب اس کے پائے کی اینٹ ہے، اس کا فاؤنڈیشن ہے، اس کا پایا ہے۔ اگر یہ اس کا پایا مکتب ٹھیک ہوگا تو انشاءاللہ العزیز پوری زندگی ان کی ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کو یوں سمجھو کہ یہ ایک کروڑ رجو ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے۔ اگر یہ کروڑ رجو ریڑھ کی ہڈی آدمی کی ٹھیک ہوتی ہے تو آدمی ٹھیک ٹھیک چلتا پھرتا ہے، اور اگر یہ ریڑھ کی ہڈی کروڑ رجو میں ایک من کا ایک ہڈی بھی ادھر ادھر ہو جائے تو پھر انسان کا چلنا پھرنا بیٹھنا سب مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے یہ مکتب اور مدرسے ہماری ایمانی زندگی کی کروڑ رجو ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے، لہذا اس کا خاص طور پر دھیان رکھنا چاہیے۔ میں آپ سب کو کہوں کہ بچوں کو مکتب میں مدرسے میں ضرور پابندی کے ساتھ بھیجنے کی کوشش کرو، اس سے ان کی زندگی انشاءاللہ بن جائے گی۔ استادوں کی خدمت میں یہ درخواست کروں گا کہ آپ جس بستی میں جس محلے میں پڑھاتے ہیں وہاں کا سروے رپورٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ جتنے بھی ایمان والوں کے گھر ہے ہر گھر میں سے بچہ بچی مدرسے میں مکتب کے اندر پڑھنے کے لیے آوے۔ اگر کسی گھر سے بچے آتے نہیں ہیں تو آپ خود جائیے، جا کر کے ملاقات کیجئے اور ان کو پوچھئے کہ آپ کے گھر سے بچے کیوں نہیں آتے ہیں، کیا تکلیف ہے، کیا رکاوٹ ہے، اس کو دور کرنا یہ بھی استاد کی ذمہ داری ہے۔ وہی استاد کامیاب ہوگا جو پڑھنے آنے والے بچوں کی خود فکر رکھے۔ آپ اپنی بستی میں جائیے، محلوں میں جائیے، جو بچہ بھی ابھی تک آتا نہیں ہے ان کو سمجھا کر کے بجھا کر کے لائیے۔ اللہ تعالیٰ یہ اہم کام کی طرف دھیان دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ استاد حضرات کو میں کہوں گا کہ کبھی اپنے آپ کو حقیر اور معمولی مت سمجھو، آپ جو کام کر رہے ہیں بہت اونچا کام کر رہے ہیں۔ قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی، اللہ فرماتے ہیں وَلَاكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابِ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ۔ تم اللہ والے بن جاؤ، ربانی بن جاؤ۔ ربانی اور اللہ والا بننے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ قرآن مجید پڑھنا پڑھانا، قرآن مجید سیکھنا سکھانا، یہ اللہ والا بننے کا بہترین طریقہ ہے۔ اسی لیے آپ اپنا کام بہت اونچا سمجھو تو انشاءاللہ آپ کامیاب استاد بنو گے۔ میں آپ حضرات کو ایک بات پوچھوں کہ بھائی، ہم لوگ دارالعلوم میں بڑی بڑی کتابوں کو پڑھانے والوں کو بڑے اونچے مقام سے دیکھتے اور سمجھتے ہیں، سمجھنا چاہیے، اکرام کرنا چاہیے، لیکن یہ بچے جو دارالعلوم میں آتے ہیں، بڑے مدرسے میں آتے ہیں، پہلے مکتب کی تعلیم پوری کر کے آتے ہیں، جب استاذ ان کو مکتب میں تیار کرتے ہیں تب جا کر کے وہ دارالعلوم میں پڑھنے کے قابل اور لائق ہوتے ہیں. اسی لیے مکتب کے استاذ کی تعلیم تو بنیادی تعلیم ہوئی, اصل تعلیم ہوئی. اور ایک مثال میں دیا کرتا ہوں, جب بھی ہمارے نورانی مکاتب کے مدرسوں سے ملاقات ہوتی ہے تو ایک بات میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے, حدیث پڑھانے والے اساتذہ, شیخ الحدیث, تفسیر پڑھانے والے استاد شیخ التفسیر, ہدایہ اور فقہ کی کتاب پڑھانے والے اساتذہ بیچارے رات میں کتنی محنت کرتے, کتنا مطالعہ کرتے, کتنی شروحات دیکھتے اور آ کر کے صبح میں سبق پڑھاتے ہیں. اب اساتذہ کرام, آپ سب حضرات کسی نہ کسی دارالعلوم سے آپ نے دور حدیث شریف تک پڑھا ہے, یا یہ کہ بہت سو نے افتا بھی کیا ہوگا. ایک سوال میں آپ کو کروں کہ جو اساتذہ کرام نے رات میں دیر دیر محنت کر کے بڑی بڑی علمی بحثیں آپ کے سامنے کی تھی, اس میں سے کتنی باتیں آپ کو اس وقت یاد ہے؟ فراغت دورہ ہو گیا, بھولنا بھی شروع ہو گیا, بلکہ دورہ پڑھتے تبھی یاد نہیں رہتے. سالانہ امتحان کے لیے محنت سے ساری باتوں کو یاد رکھنا پڑتا ہے, اور پھر دورے کے بعد اگر درسیات سے سلسلہ نہیں ہے, عربی کتابوں کو پڑھانے کا سلسلہ نہیں ہے, تو پھر تو یہ علمی باتیں سب ادھر ادھر نکل کے ختم ہو جاتی ہے. اس کے مقابلے میں آپ کے مکتب کے استاذ نے ناظرہ پڑھاتے وقت پر آپ کو جو قرآن پڑھایا تھا, آپ کو جو صورتیں یاد کرائی تھی, مسنون دعائیں یاد کرائی تھی, وہ سب کی سب آپ کو یاد ہے, اور آپ زندگی بھر تک اس کو پڑھتے ہیں اور ان باتوں پر عمل کرتے ہیں. تو اب تقابل کرو, کمپیر کرو کہ کامیاب کون زیادہ ثواب اور جو ہے ثمرات کے اعتبار سے, یہ بیچارے شیخ الحدیث, حدیث اور تفسیر اور فقہ کے اساتذہ اتنی محنت کرے, اتنی جدوجہد کرے, اور یہ مکتب کے اساتذہ ہے ماشاءاللہ, اس میں سے عشر عشیر محنت بھی نہیں کرتے, اور ان کا ثواب اور ان کا صدقہ جاریہ دیکھو کتنا لمبا چوڑا. اسی لیے آپ لوگ کبھی اپنے پڑھانے کو معمولی مت سمجھو, حقیر مت سمجھو. آپ جو ان بچوں کو پڑھا رہے ہیں اس کا فائدہ پوری زندگی ہے, پوری زندگی وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہونے والا ہے. ایک دوسری مثال میں دیتا ہوں کہ یہ بچے مدرسوں میں جا کر کے تجوید پڑھیں گے, قرات پڑھیں گے, سبا پڑھیں گے, عشرا پڑھیں گے. تو سوال یہ ہے کہ انہوں نے تجوید پڑھی, سبا پڑھا, عشرا پڑھا کب؟ مکتب میں ناظرہ پڑھنے کے بعد پڑھا. تو اصل تو محنت ہے آپ کی, ناظرہ پڑھانے والوں کی. اسی لیے آپ اپنی اس محنت کو بالکل معمولی مت سمجھو. دیکھو قرآن مجید کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کام کے لیے دنیا میں بھیجا گیا, جو حضور کو بھیجے جانے کے مقصد ہے, وہ مقصد قرآن میں مختلف آیتوں میں اللہ نے بیان فرمائے. اس میں ایک طرح کی آیت تقریباً چار جگہ کے اوپر ہے, لیکن ہر جگہ پر اس آیت میں کیا ہے, وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ. تو اس طرح کی آیتیں قرآن میں جہاں جا بھی وہاں يَتْلُو عَلَيْهِمْ پہلے ہے, پھر بعد والی چیز وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اس میں کچھ آگے پیچھے ہیں, کہیں پر یہ پہلے کہیں وہ بعد میں, لیکن يَتْلُو عَلَيْهِمْ ہر جگہ کے اوپر ہے. کیا معلوم ہوا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن اہم کام کے لیے دنیا میں بھیجا گیا تھا, اس میں بہت بڑا اہم کام یہ ہیں, قرآن کے الفاظ پڑھانا, قرآن کے الفاظ سنانا, قرآن کے الفاظ سکھانا. تو یہ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں جن مقصد کے لیے بھیجا گیا, اس میں اولین مقاصد کے اندر سے ہے. इसीलिए आप अपने काम को बिल्कुल मामूली मत समझो, बहुत बड़ा काम समझो, तो इंशाल्लाह आप अच्छे और कामयाब मुदर्रिस बनोगे। कभी अपने काम को हकीर मत समझो। हमारे बाद असातिजा को ये कहने में शर्म आती है कि मैं मकतब पढ़ाता हूँ, नाजिरा पढ़ाता हूँ। इनको कभी कोई पूछता है आप क्या पढ़ाते हैं, तो कहते हैं जलालैन शरीफ का मतन पढ़ाता हूँ, बेजावी शरीफ का मतन पढ़ाता हूँ। अरे भाइयों, हिम्मत से और अल्लाह का शुक्र अदा करके कहो अल्हम्दुलिल्लाह मैं नाजिरा पढ़ाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुरान पढ़ाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जबान से इस दुनिया में सबसे अच्छा इंसान हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, तुम्हारे अंदर सबसे अच्छा आदमी वो है जो कुरान मजीद को सीखता है और दूसरे को सिखलाता है। तो ये तो इस दुनिया का सबसे अच्छा इंसान हुआ कुरान मजीद को सीखने वाला और सिखाने वाला। इसीलिए आप अपने आप को समझो कि इस दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो। जब ये चीजें आप सोचेंगे, आपका मकाम, आपका मर्तबा, आपका काम, तो जाकर के आप कामयाब उस्ताद बन सकोगे और आपके अंदर कामयाबी आएगी। अब मैं आपको चंद बुनियादी बातों की तरफ रहनुमाई करता हूँ। नंबर एक, अकाइद। आप अपने पास आने वाले बच्चों के अकीदों की फिक्र कीजिए, ये सबसे पहली बुनियादी अहम तरीन फिक्र है। अकीदा जिसको गुजराती में मान्यता बोलते हैं, मान्यता यानी जो चीज दिल से मानने की है, जिसका काम ताल्लुक ईमान के साथ है। बच्चों को आप पहले ही दिन से आप ईमान मजबूत कीजिए, और उसका बेहतरीन तरीका है जुबानी सवाल जवाब। जैसे आप सवाल करो, बेटा तुमको किसने पैदा किया, तो जवाब ये जहन में फिट कराओ, अल्लाह ने पैदा किया। बेटा ये जमीन किसने बनाई, कहा अल्लाह ने बनाई। बारिश कौन बरसाते हैं, तो कहा अल्लाह बरसाते हैं। रोजी कौन अता फरमाते हैं, तो अल्लाह ताला रोजी अता फरमाते हैं। हमारे नबी कौन, हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम कौन, हम मुसलमान, ईमान वाले। इस तरह सवाल जवाब के जरिए से आप इनको ईमान, तौहीद, रसूल, किताब जहन के अंदर बिल्कुल फिट कर दीजिए। ये सबसे पहला काम कामयाब उस्ताद के लिए है कि वो आने वाले बच्चों के अकीदों को मजबूत और सही करा देवे। और देखो, अल हिब्जु फितिफली कन्नक्शी फिल हजरी, बचपन में बच्चों को जो बात जहन में रह जाती है, वो पत्थर के अंदर जो चीज खोद के लकीर बनाई जाए ऐसी हो जाती है। इसीलिए इनको बचपन में ये बात अगर आप बिठा देंगे, तो उस सूरत के अंदर पूरी जिंदगी उसके दिमाग में महफूज हो जाएगा। एक काम तो आपको ये करना है। और अकीदे के बाब के अंदर एक बात खास ध्यान में रखने की कि जमाने के हालात के एतबार से अकीदों को बिगाड़ने वाली जो बातें भी चल रही हो, उन बातों के ऊपर बच्चों का खास ध्यान दिलवाओ, खास तवज्जो दिलवाओ। जो भी टाइम चल रहा है, जो भी माहौल चल रहा है, जो भी आपका इलाका है, उसके हिसाब से जो अकीदों को बिगाड़ने वाली चीज होती है, उन बातों को आपको मकतब के अंदर बताना बहुत जरूरी है। जैसे अभी अभी सूरज ग्रहण गया थोड़े दिन पहले, तो सूरज ग्रहण हुआ तो आप उस मौके से बच्चों को कहो कि बेटा ये सूरज जो चमकता है, अल्लाह के चमक से चमकता है, और अल्लाह जब चाहते हैं तो इस सूरज को काला बना देते हैं। इस तरह जो भी मौका है, आप उनके ईमान को समझा, ईमान को ठीक रखने की फिक्र कीजिए। एक और अहम काम कामयाब उस्ताद के लिए, वो है बच्चों को सही कुरान पढ़ाना। असल चीज है कुरान मजीद और सही कुरान पढ़ाना है इनको। हदीस में रुब्बा क़ारिइन लिल कुरआनि वल कुरआनु यलअनु, रुब्बा क़ारिइन लिल कुरआनि वल कुरआनु यलअना। बहुत से कुरान पढ़ने वाले ऐसे हैं कि कुरान उनके लिए लानत और बद्दुआ करता है। इस हदीस का एक मतलब ये है, जो कुरान मजीद को सही नहीं पढ़ते, यानी जिस तरह उसको अरबी लहजे के अंदर पढ़ना चाहिए इस तरह नहीं पढ़ते, ऐसे लोगों के ऊपर कुरान मजीद लानत करता है। देखो, दुनिया की हर जुबान, हर भाषा, हर लैंग्वेज के अंदर उसमें जबर जेर पेश की रियायत करनी पड़ती है, वरना जरा भी इधर उधर करो तो माना बदल जाता है। मारूफ मजहूल की रियायत करनी पड़ती है, वरना मायना और मीनिंग बदल जाता है। मैं उसकी एक मिसाल दूं, अंग्रेजी जुबान देख लो, अंग्रेजी भाषा, तो अंग्रेजी में एक लफ्ज है लिफ्ट और दूसरा लफ्ज है लेफ्ट। अब लिफ्ट और लेफ्ट में मारूफ और मजहूल का फर्क है। जरा कसरे को जेर को दबा के पढ़ेंगे तो का लिफ्ट, और उसको मजहूल और हल्का पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे लेफ्ट। अब दोनों का मीनिंग कितना बदल गया। लिफ्ट के माने ऊपर नीचे जाने आने वाली मशीन, और लेफ्ट के माने बाई जानिब डाबी जानिब। देखो, कसरे को जेर को मारूफ मजहूल पढ़ने से अंग्रेजी में माना बदल गया। तो ये तो कुरान है, ये अरबी जुबान है, तमाम जबानों में अफजल जुबान है। उसमें जेर जबर कसरा मारूफ मजहूल की रियायत नहीं करेंगे तो माना कितना खराब हो जाएगा। एक दूसरी मिसाल मैं आपको दूं, अरबी में दो काफ है, एक काफ को छोटा काफ, एक काफ को बड़ा काफ बोलते। अब छोटे काफ के साथ पढ़ेंगे तो कल्ब काफ लाम्बा, और बड़े काफ से पढ़ेंगे तो कल्ब काफ लाम्बा। लेकिन दोनों के अंदर कितना फर्क। छोटे काफ से पढ़ेंगे कल्ब, उसके माने कुत्ता, और बड़े काफ से पढ़ेंगे कल्ब, उसके माने दिल। देखिए, एक लफ्ज के मखरज को आपने सही नहीं पढ़ा तो उसकी वजह से माना कितना बदल गया, और दिल से कुत्ता और कुत्ते से दिल, कितना फर्क आ गया माने के अंदर। इसीलिए मैं आप सब हजरात को कहता हूं कि अपने पास आने वाले बच्चों को सही कुरान पढ़ाओ, तजवीद के कवायद की रियायत के साथ कुरान पढ़ाओ। और अगर उस्ताद साहब का कुरान कमज़ोर है तो वो खुद पहले किसी से कुरान सही कर लेवे, ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए बहुत से मदरसों में कानून है कि दौरे हदीस शरीफ के तलबा को तीसवे सुपारे का हिब्ज इम्तिहान मा तजवीद देना होता है, तब जाके सनद मिलती है। ये बहुत जरूरी है, बल्कि मैं तो कहता हूं कि हर दर्जे के अंदर नाजिरा सही करने का निजाम होना चाहिए। चूंकि अल्लाह की तौफीक और अल्लाह के फजलो करम से तकरीबन 24-25 साल से मैं तर्जुमे कुरान और जलालैन शरीफ पढ़ाता हूं, तो बच्चों को मैं कुरान खुद सुनता हूं कि रोजाना सुबह में आपको इबारत पढ़ने की, यानी कुरान पढ़ने का। तो बहुत से बच्चों को फिर मैं कुरान की तस्हीह कराता हूं, कहता हूं कि इस छुट्टी में आपको नाजिरा के लिए वक्त फारिग करना है। तो इदारों के अंदर भी दर्जात अरबी में पढ़ने वाले तलबा का कुरान कमजोर हो जाता है, होता है। ये मकतब के जमाने की कमजोरी है। इसीलिए मैं आप सब हजरात को कहूंगा कि अपना कुरान मजीद अगर कमजोर है तो उसको सही कर लो और फिर अपने बच्चों को पढ़ाओ, तो इंशाल्लाह आप कामयाब उस्ताद बन जाएंगे। माशाल्लाह हमारे पास बहुत से असातिजा है कि जो मकतब में बच्चों को इतना अच्छा नाजिरा तजवीद के साथ पढ़ाते हैं कि फिर उनको आप नाजिरा के साथ कारी की सनद देना चाहो तो दे सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह वो इतना अच्छा जो है नाजिरा पढ़ाते हैं। तो हम लोगों को इसकी खास रियायत करनी चाहिए। और बात आगे, बच्चों को ज़रूरी दीनी मसाइल सिखाओ। हर मुसलमान अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, ज़िंदगी के हर मौके पर अल्लाह का हुक्म पूरा करे, जो काम करने के हैं मोमिन होने की हैसियत से वो करे, जिन कामों से रोका गया है उससे अपने आप को बचावे। और उसके लिए दीनी मसाइल की जानकारी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए उस्ताद कामयाब वो हैं जो आने वाले बच्चों को बुनियादी दीनी ज़रूरी मसाइल सिखलावे। वुजू का तरीक़ा, गुसल का तरीक़ा, नमाज का तरीक़ा, रोज़ा क्या है, ये सब चीज़ें उस्ताद को चाहिए कि वो ज़रूर अपने तलबा और बच्चों को सिखलाए। आगे सुनिए, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत सिखावे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सुनने से हुजूर की मोहब्बत ज़िंदगी में आएगी और हुजूर की सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना आसान हो जाएगा और हुजूर की मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। इसीलिए बच्चों को सीरत सिखाओ, बच्चों को सुन्नत सिखाओ। देखो मदरसों में आप इस तरह का माहौल बनाओ कि भाई आज किस बच्चे ने मिसवाक किया, किस बच्चे ने मिसवाक की सुन्नत जिंदा की, चलो उसको इनाम दिया जाए। किस बच्चे को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों के नाम याद है, बेटों के नाम है, नाम याद है, हुजूर के ख़ानदान मुबारक के नाम याद है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र की सारी तफसीलात मालूम है, तो सीरत भी इनको खूब सिखाओ। ये बहुत ज़रूरी एक मोमिन के लिए ईमान के एतबार से। एक मरतबा एक बहुत बड़ी गवर्नमेंट सर्विस के लिए इंटरव्यू हो रहा था। इंडियन सिविल सर्विसेज, जिस सर्विस के ज़रिए से आदमी कलेक्टर और ऐसी ऊंची पोस्ट पर होता है, तो इंटरव्यू में एक मुसलमान लड़की भी थी। तो इंटरव्यू लेने वाले एक साहब ने उसको पूछ लिया कि बहन तू मुसलमान है इसलिए तुमको ये सवाल करता हूँ कि मेराज क्या चीज़ है। तो उस लड़की ने बेधड़क जवाब दिया कि मेराज यानी मेरा राज। तो कहा कि जिसको अपने मजहब की एक बात मेराज अपने नबी की मालूम न होवे, वो आदमी इतनी बड़ी सर्विस और खिदमत कैसे अंजाम देवे। कहा उसको रिजेक्ट कर दो, इसको नाकाम करो। तो देखिए दीन की बुनियादी मालूमात, दीन की बुनियादी सीरत, ये जानना भी और बच्चों को सिखाना एक कामयाब उस्ताद के लिए बहुत ज़रूरी है। आगे अपने बच्चों को अखलाक सिखाओ। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या फरमाया, इन्नक लअला खुलुकिन अज़ीम। ए नबी, अल्लाह ताला ने आपको बड़े ऊंची अखलाक देकर के भेजा है, इसीलिए अखलाक सिखाना बहुत ज़रूरी है। अखलाक के ज़रिए दूसरों का हक अदा करना सीखेंगे, दूसरों का रिस्पेक्ट करना सीखेंगे, दूसरों का अदब करना सीखेंगे, विनय आएगा, विनम्रता आएगी, दूसरों के साथ कैसे रहना वो आएगा, माँ बाप के साथ, भाई बहनों के साथ, अड़ोसी पड़ो किसी के साथ कैसे रहना वो सब सीखने को मिलेगा। इसीलिए अखलाक सिखाओ। मैं आपको एक अखलाकी किस्से की मिसाल सुनाऊं। हमारी यहाँ मदरसे में एक आम रिवाज है और बहुत अच्छा रिवाज है कि बच्चे पढ़ने वाले उस्ताद की चप्पल सीधी करके रखते हैं। ये एक अखलाक की बात है, बहुत अच्छी बात है। एक बड़े मदरसे की बात मैं करता हूँ, उसमें गवर्नमेंट के एक ऑफिसर, जैसे कि CBI, CID, ID, IB वाले अफसरान होते हैं, उसमें से एक बड़े ऑफिसर मदरसे में कुछ रिपोर्ट लेने के लिए गए। उन्होंने मदरसे की ऑफिस के बाहर जूते निकाले। अब पीरियड यानी जब एक एक घंटे उनके बदलते हैं, तो एक क्लास से दूसरे क्लास में बच्चे जा रहे थे, तो बच्चों ने ऑफिस के बाहर देखा कि जूते किसी के उल्टे हैं। उनको ये नहीं मालूम ऑफिस में कौन है। तो उन गुजरने वाले बच्चों ने आदत के मुताबिक जूते ठीक कर दिए, सीधे करके रख दिए। तो आईबी ऑफिसर ने फौरन अपनी रिपोर्ट लिखी कि बस मैं पूछने आया था मदरसे में क्या सिखाते हैं, लेकिन मुझे सवाल करने की कोई जरूरत नहीं, मैंने प्रैक्टिकल देख लिया कि इन बच्चों को कितने अच्छे अखलाक, कितना अच्छा अदब, कितना अच्छा विनय और विनम्रता सिखाई गई। उन्होंने बहुत अच्छी रिपोर्ट लिख करके वो चले गए। तो आज बच्चों को अच्छे अखलाक सिखलाना, आदाब सिखलाना बहुत जरूरी है, और वही कामयाब उस्ताद होगा कि जो बच्चों को अच्छे अखलाक सिखावे। कामयाब उस्ताद की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये है कि बच्चों को दीन की बहुत सारी बातें जुबानी याद करावे, जैसे कि दुआएं हैं, सुबह उठने की दुआ, खाने की दुआ, और जो है कलिमाए तैयबा और पांचों कलिमात है, जरूरी सूरतें हैं, ये चीजें याद कराना ये बहुत अहम और जरूरी है। इतनी सूरतें याद करा दो कि ये जो है आराम से नमाज पढ़ा सके। देखो अभी लॉकडाउन का जमाना चल रहा है, बहुत से लोगों को, चार पांच पांच आदमियों को नमाज पढ़ाने का मौका मिल रहा है। तो अगर इन्होंने बचपन में मकतब में छोटे मदरसे में जरूरी सूरतें याद कर ली, तो उनके लिए ऐसे माहौल में इमामत कराना कितना आसान, कितनी आसानी से वो इमामत करा लेंगे। इसीलिए ये भी बहुत जरूरी है कि इनको जरूरी सूरतें याद कराओ और सीरत पाक याद कराओ, मसनून दुआएं याद कराओ, ये कलिमात याद कराओ। ये बहुत अहम और बहुत जरूरी चीज बन जाती है। बल्कि मैं तो यूं कहता हूं कि हर उस्ताद जरूरी सूरतों के साथ साथ सूरे यासीन, सूरे तबारक, सूरे कहफ, ये भी बच्चों को याद करा दे। इसलिए कि हदीस में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा दिल चाहता है कि मेरे हर उम्मती के दिल में सूरे यासीन और सूरे तबारक हो। इसीलिए आप अपने पास पढ़ने वाले बच्चों को अखीरी सुपारे की जरूरी सूरतें याद कराने के बाद सूरे यासीन और सूरे तबारक भी याद करा दीजिए, सूरे कहफ भी याद करा दीजिए, ताकि वो तिलावत करता रहे और फितने से हिफाजत करे, हिफाजत होवे। देखो कोई भी इमारत होती है उसके पिलर होते हैं, खंभे होते हैं। तो हमारे मकतब के भी चार पिलर है, चार सुतून है। नंबर एक उस्ताज, नंबर दो मुतवल्ली कमिटी, नंबर तीन निसाब और कोर्स, और नंबर चार बच्चों के वाली। अब कामयाब उस्ताद कौन बनेगा? अच्छे अखलाक वाले उस्ताद, जो अल्लाह को राजी करने के लिए बच्चों को कुरान पढ़ावे, बच्चों को अपनी हकीकी औलाद समझे, तो उस्ताद कामयाब होगा। देखिए मैं इस पर आपको एक बात कहूं, आप कुरान मजीद जब पढ़ावे अल्लाह को राजी करने के लिए पढ़ाइए। और एक हदीस जो आपने तालीम में भी सुनी होगी कि लोग जब कुरान मजीद के लिए जमा होते हैं, कुरान मजीद जमा हो करके पढ़ते पढ़ाते हैं, तो अल्लाह की रहमत उन पर नाजिल होती है, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमा देते हैं और अल्लाह ताला उनको रहमतों से ढांप लेते हैं, मलाइका के सामने अल्लाह ताला उनका तस्किरा फरमाते हैं। तो रोजाना सुबह में, शाम में, जिस वक्त भी आप मकतब में पढ़ाने के लिए जावे, तो इस हदीस का इस्तेहजार करके जाइए कि हम कुरान के हलके में जा रहे हैं, इसकी बरकत से अल्लाह मगफिरत करेंगे, रहमतों से नवाजेंगे, अल्लाह ताला इसकी बरकत से जो है मलाइका के सामने हमारा तस्किरा करेंगे। इस हदीस को ध्यान में रख के जाइए तो इंशाल्लाह आपको बहुत बड़ी फजीलत और सवाब हासिल होगा। और जितना वक्त आप लगाएंगे इतना वक्त आपका सवाब और अज्र के अंदर गुजरेगा। मैं आपको एक खास बात भी बतला दूं पॉइंट की, नुक्ते की। ये जो पगार मिलता है ना तनख्वाह, ये आप जो पढ़ाते हैं उसका पगार नहीं है। इसीलिए कि आप ला इलाहा इल्लल्लाह बच्चे को याद करा दो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम याद करा दो, सारी दुनिया की दौलत भी उसके बदले में बराबर नहीं हो सकती। ये जो आपको पगार मिलता है ये तो आप जो टाइम देते हैं ना, वक्त देते, उसका कुछ बदला मिल रहा है, कुछ, पूरे पूरा नहीं, कुछ बदला। मैं उस्तादों को कहता हूं कि जितना टाइम आप मदरसे में मकतब में देते हैं, अगर दुनिया में किसी कारोबार में देते तो जरूर ज्यादा नफा कमा लेते, लेकिन आपने अल्लाह की किताब के लिए, कुरान के लिए वक्त दिया, तो ये तनख्वाह तो जो आप वक्त दे रहे हैं उसका कुछ बदला है, बाकी जो आप पढ़ा रहे हैं उसका बदला तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ही अता फरमाएंगे। इसीलिए कभी भी अपने पढ़ाने को अपने पगार के साथ, तनख्वाह के साथ मत जोड़ो, अल्लाह से अजर लेना है। ये बच्चे पढ़ेंगे, पूरी जिंदगी अमल करेंगे, हमको सवाब मिलेगा, और उस्ताद की तालीम की बरकत से मुसलमानों की कयामत तक आने वाली नस्लों का ईमान बच जाएगा, इनकी दी जिंदगी और दीनदारी सलामत रहेगी। और देखो, हर आने वाले बच्चे को अपना सच हकीकी बच्चा समझो। एक मरतबा हजरत मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह जामे अजहर तशरीफ ले गए तो शेखुल अजहर ने वहां के असातिज़ा को जमा किया, तो हजरत मौलाना अली मियां साहब ने उनको कुछ नसीहत की जामे अजहर मिस्र में। उसमें एक नसीहत ये फरमाई, तल कल कौम अफला तकबी दिहिम, कौम ने अपने दिल जिगर के टुकड़े बच्चों की शक्ल में तुम्हारे सामने पेश कर दिए हैं। अल्लाहु अकबर, ये बच्चे कौम के दिल जिगर के टुकड़े हैं जिनको आज हमारे सामने भेजा गया है। अगर हम इनको इखलास से पढ़ाएंगे तो इंशाल्लाह ये बच्चे हमारे लिए दुनिया आखिरत में इज्जत का जरिया बनेंगे। और याद रखो, ये पत्थर के टुकड़े हमारे पास आते हैं, इनको तराश के तैयार करके हमें हीरे बनाने हैं। गुजरात के एक मदरसे के बारे में मैंने सुना है कि उस मदरसे की जब मस्जिद बन रही थी तो मकराना मार्बल लेने के लिए गए, तो मकराना वालों ने मार्बल का बहुत बड़ा हिस्सा फ्री में दिया, और उस मोहतमिम साहब ने वहाँ मार्बल वालों के बच्चों की तश्कील की और बच्चों को ले आए और उनको हाफिज बनाया। फिर वो मोहतमिम साहब लोगों को कहते थे कि इन मार्बल वालों ने हमको पत्थर दिए और हमने इसके बदले में इनको हीरे दिए। वाह वाह, कितना प्यारा जुमला कि हकीकत के अंदर ये बच्चे जो कुरान पढ़ेंगे वो हीरे हैं, हीरे। इसीलिए एक बहुत बड़ी उम्मत की अमानत हमारे पास है, इनको हम अपनी बेहतरीन तालीम के जरिए से हीरे बनावे, तब जाकर के हम कामयाब उस्ताद बनेंगे। उस्तादों, वक्त की पाबंदी करो। जो वक्त मदरसे का होता है उससे पहले जाओ और वक्त पूरा होने के बाद निकलो। अगर आप उसको दीन की खिदमत समझेंगे, कुरान की खिदमत समझेंगे, तो आप जो है टाइम ज्यादा देंगे, और नौकरी समझेंगे तो आप घड़ी देखेंगे। हमको नौकरी नहीं करनी, हमको कुरान की खिदमत करनी है। इसीलिए आप अगर वक्त से पहले मदरसे पहुंच जाएंगे तो बच्चे भी इंशाल्लाह पाबंदी से आएंगे, और वक्त के बाद आप निकलेंगे तो बच्चे भी जो है पाबंदी से रहेंगे। इसलिए पूरे पूरा वक्त दो, और मदरसे के वक्त में मोबाइल पर बात करना, व्हाट्सएप पर खेलते रहना, व्हाट्सएप मैसेज देखना, उस्तादों का चाय नाश्ते की महफिल लगाना, ये सब चीजें बिल्कुल गलत और बिल्कुल बुरा है। जितना वक्त आपके लिए है ये अमानत है, और बहुत बड़ी इसकी अमानतदारी का आपको लिहाज रखना है। हजरत हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह की यह मामूल था कि हर महीने की पहली तारीख को उस्तादों के पास एक कोरा कागज जाता था, और इस महीने में मदरसे के वक्त में जितना वक्त उन्होंने अपने जाती और पर्सनल काम में लगाया वो इतनी मिनट वो लिख देते थे और इतना पगार कटवा देते थे। कितनी बड़ी अमानत और दियानतदारी की बात थी। इसीलिए आप वक्त की पूरे पूरी पाबंदी कीजिए। आप एक आयत हमेशा जहन में रखिए, अलम यालम भी अन्नल्लाह यरा, अल्लाह ताला आपको देख रहे हैं, मुतवल्ली साहब, ट्रस्टी साहब, निगरान साहब, मुआविन साहब, विजिटर साहब, देखे या ना देखे, लेकिन अल्लाह ताला हमको देख रहे हैं, इस बात की हमेशा फिक्र रखो। और देखिए, बच्चों को प्रैक्टिकली अमलन तालीम भी दो, मसलन नमाज की मश्क कराओ और वुजू अपने सामने बैठ के कराओ, मैयत का कफन दफन कैसे करना उसकी मश्क कराओ। ये अमली मश्क ये भी बहुत जरूरी चीज है। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला ने जिस जमाने में अमीरुल मोमिनीन थे, मुअत्ता इमाम मालिक में ये वाकिया मौजूद है, उस जमाने के अंदर किसी ने उनको दरख्वास्त की तो आपने पानी मंगवाया और बाकायदा वुजू करके सिखाया। देखो, अमीरुल मोमिनीन एक तिहाई दुनिया के खलीफा और बादशाह थे, लेकिन लोगों को वुजू सिखला रहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे वुजू करते थे। लिहाजा आप मकतब के बच्चों को वुजू है, नमाज है, कफन दफन की अमली तालीम दीजिए। कामयाब उस्ताद वो हैं जो खुद शरीयत और दीनदारी की पाबंदी करे, तो इंशाल्लाह उसका अच्छा असर होगा। उस्ताद साहब की दाढ़ी सुन्नत के मुताबिक हो, उस्ताद साहब के कपड़े सुन्नत के मुताबिक हो, उस्ताद साहब जो है अच्छे अखलाक के हो, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। उस्ताद तो बच्चों के लिए आईना है, नमूना है। उस्ताद की जैसी जिंदगी होगी ऐसी इंशाल्लाह बच्चों की जिंदगी होगी। हजरत मौलाना अब्दुल्ला साहब कापोदरवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक किस्सा मुझे सुनाया था कि वो रविवार के दिन छुट्टी के दिन बच्चे घर होते हैं स्कूल की छुट्टी, तो बच्चे आपस में खेलते हैं, तो कहा हजरत ने घर के बच्चों के बारे में सुनाया कि मेरे बच्चे सब खेलने लगे घर के छोटे छोटे पोते नवासे, तो उसमें एक बच्चा उस्ताद बना और दूसरे सब उसके शागिर्द बने, ये सब नकल उतार रहे थे। तो जो बच्चा उस्ताद बना वो दो लकड़ी लेके बैठा और कभी दाहिनी तरफ लकड़ी पछाड़ता है, कभी बाईं तरफ लकड़ी जमीन में मारता है और कहता है, ए डोबा चल पढ़, ए डोबी चल पढ़। हजरत मौलाना अब्दुल्ला साहब फरमाने लगे कि मैं ये सब चीजें देख रहा था, मैं समझ गया कि ये बच्चा जो डोबा डोबी बोल रहा है, लकड़ी बार बार पछाड़ रहा है, तो ये उसके उस्ताद का असर है। तो मैंने फिर असर की नमाज में पूछा मेरे बच्चों के नाम लेकर के इनके उस्ताद कौन है। फिर मैंने उनके उस्ताद को तन्हाई में बुला के पूछा, क्या आप अपने बच्चों को डोबा डोबी इस तरीके से बोलते हो? तो कहा उस उस्ताद ने इकरार कर लिया। तो देखिए, आप जो अल्फाज अपने बच्चों को बोलेंगे, आपके पास पढ़ने वाले बच्चे उसकी नकल उतारेंगे। मुझे एक उस्ताद के बारे में अच्छी तरीके से मालूम है कि वो उस्ताद अपने क्लास में बैठ करके गुटखा खाते थे, तो उसका असर ये हुआ कि उस उस्ताद के पास पढ़ने वाले तमाम बच्चे गुटखा खाने के आदि बन गए। देखिए, एक उस्ताद की जिंदगी कितनी कीमती होती है। तो आपकी जिंदगी तो बच्चों के लिए नमूना है, नमूना। आप शरीयत पर अमल करेंगे, अच्छी बात बोलेंगे, अच्छे अखलाक से रहेंगे, तो इंशाल्लाह ये बच्चे भी आपको देख करके ये सारी की सारी चीजें अच्छी सीखेंगे। और कामयाब उस्ताद अपने बच्चों की हौसला अफजाई करो। बच्चों के अंदर ये मादा बहुत होता है, हौसला अफजाई अगर आप करेंगे तो बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर जो बच्चे पाबंदी से आए, इस महीने में एक भी गैरहाजिरी नहीं की, तो आप मदरसे और मस्जिद के बोर्ड पर नाम लिखो कि ये महीना शाबान का, इसमें ये बच्चा पूरे दिन हाजिर रहा, एक दिन भी गैरहाजिरी नहीं की। इसी तरीके से ये बच्चा पाबंदी से नमाज में आया, इस तरीके से बोर्ड पर नाम लिखो, ट्रॉफी दो, कुछ हदिया दो, तो इससे बच्चों की हौसला अफजाई बहुत होगी और बच्चे बहुत मेहनत से आगे बढ़ेंगे। ये भी कामयाब उस्ताद के लिए बहुत जरूरी है। और देखो, बच्चों को शौक दिलाने के लिए नबियों के, नेक लोगों के, औलिया अल्लाह के किस्से भी इनको सुनाओ। अगर आप इनको अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे किस्से सुनाएंगे तो उसकी बरकत से इनके अंदर शौक पैदा होगा, हौसला पैदा होगा और ये आगे बढ़ेंगे। बल्कि मैं तो कहता हूं कि जब ये आपके पास पढ़ने आना शुरू करे तो पहले आप उनको इल्म की फजीलत सुनाओ, प्यारे प्यारे किस्से सुनाओ, मकतब में आने की फजीलत सुनाओ, ऐसे वाकियात सुनाएंगे तो उनको आने का हौसला बढ़ेगा। ये बहुत जरूरी है और उनके अंदर तालीम की रगबत पैदा होगी। और कामयाब उस्ताद जो बच्चों को शफकत देवे, प्यार देवे। देखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबी क्या बयान की गई, फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिंत लहुम वलौ कुंत फज्जन गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़ज्जु मिन हौलिक। अल्लाहु अकबर। जिनको अल्लाह ने क्या फरमाया, खुद हुजूर ने फरमाया बुइस्तु मुअल्लिमा, अल्लाह ने मुझे मुअल्लिम और उस्ताद बना के भेजा। उस कामिल उस्ताद की खूबी अल्लाह ने क्या बयान की, लिंत लहुम, शफकत, नरमी, प्यार, मोहब्बत, और जबान में सख्ती नहीं, अखलाक में बुराई नहीं। वो उस्ताद कामयाब बनता है। इसीलिए आप इनके साथ शफकत मोहब्बत से पेश आइए तो इंशाअल्लाहुल अजीज ये बच्चे बहुत काम के बनेंगे। और हदीस में भी है, हजरत ज़िमाम इब्ने सालबा रदी अल्लाह ताला अन्हु जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए तो बहुत अकड़ के साथ आए थे और आके पूछा, ए मोहम्मद, मैं तुमको कुछ पूछना चाहता हूँ और सख्ती से पूछूंगा। तो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत शफकत और मोहब्बत से फरमाया, जो पूछना हो पूछो। कि देखो कितनी शफकत और नरमी से हुजूर ने उनके साथ मामला किया। तो आने वाले बच्चों के साथ शफकत और मोहब्बत का खूब बर्ताव करो। देखो मोहब्बत से वो मदरसे में दाखले के बाद जम जाएंगे। और अगर आपने उनको पहले दिन से लकड़ी दिखाई, डांट डपट की, गुस्सा किया, तो वो जमेंगे नहीं, मदरसा छोड़ करके भाग जाएंगे। आप इन बच्चों के घरेलू हालात के बारे में भी पूछ परछ कीजिए। बाज मर्तबा घरों में माँ बाप के दरमियान झगड़ा होता है, फैमिली प्रॉब्लम होते हैं, जिसकी वजह से ये बच्चे टेंशन और उलझन के अंदर रहते हैं, तो वो भी बच्चों की जिंदगी पर बहुत असर करता है। आप बच्चों को पूछे, बेटा तू क्यों उलझा उलझा रहता है, क्यों टेंशन में रहता है, तेरे घर में कोई प्रॉब्लम है? तो उस वक्त पर बच्चों की मदद करो तो आइंदा वो बच्चे अपना दुख, अपनी परेशानी, अपनी तकलीफ आपको सुनाएंगे और आप उनकी सही रहनुमाई कीजिए। और बच्चों को अच्छे नाम से पुकारो, प्यारी प्यारे नामों और प्यारे प्यारे अलकाब के साथ बच्चों को पुकारो। और इसके साथ साथ बच्चों को रोजाना तरगीब दो कि मदरसे में पढ़ी हुई बात घर जाकर घर वालों को सुनावे। जैसे आपने उनको कलमा याद कराया तो बेटा घर जाके कलमा सुनाना, आपने उनको दुआ याद कराई बेटा घर जाके दुआ सुनाना, आपने उनको सीरत पाक सुनाई बेटा घर जाके ये सीरत घर वालों को सुनाना, आपने उनको अखलाक सुनाए बेटा घर जाकर अखलाक सिखाना, आपने उनको खाने पीने की सुन्नत सिखाई बेटा घर जाके सबको खाने पीने की सुन्नत सिखाना। तो बचपन से ये बच्चा दीन फैलाने वाला बनेगा, दाई बनेगा, मुबल्लिग बनेगा। और दूसरे दिन रिपोर्ट भी लो, बेटा तूने सुनाया था कि नहीं सुनाया था? अगर नहीं सुनाया तो डांटना नहीं, समझाना, बेटा कल की और आज की बात जाकर के घर वालों को सुना देना। इस तरह आप कामयाब मुदरिस बनोगे। और जिस्म की तंदुरुस्ती, सेहत, ऐसी बातें भी आप उनको सिखलाइए कि ये खाने से नुकसान होता है, ऐसी चीज पीने से नुकसान होता है, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, बाहर की खुली हुई चीजें, गंदी चीजें, सांप, ऐसी चीजें बेटा मत खाओ, ये भी इनको सिखाओ। और जो है बच्चों को गंदगी से बचना सिखाओ, पाकी सफाई इनको सिखाओ, जायज और नाजायज खेलों की पहचान कराओ और नाजायज खेलों से बच्चों को बचाओ। और जिस खेल से बच्चों की हेल्थ अच्छी होती हो, तंदुरुस्ती अच्छी होती हो, वो बच्चों को बतलाओ। और उनको वर्जिश करना और जो है कसरत करना, एक्सरसाइज करना, ये भी इनको सिखाओ। आज के हालात में ये भी बहुत जरूरी है। और जो बच्चा रोता हुआ आवे उसको समझा कर बिठाओ, मारना ये रोने का इलाज नहीं है, उस्ताद ऐसी प्यार मोहब्बत देवे कि बच्चा खुशी खुशी मदरसे आवे। और देखिए मदरसे के वक्त में बच्चों की जरूरियात का भी लिहाज रखो। मसलन पेशाब का तकाजा हुआ, उसको छुट्टी दो। ये नहीं कि आप उस वक्त पर छुट्टी न देवे तो उससे वो झूठ बोलने का आदि बनेगा और बहुत सी मर्तबा मदरसे की चटाई वगैरह को भी बिगाड़ डालेगा। तो बच्चे हैं तो बच्चों की जरूरियात का भी लिहाज रखो। पेशाब, पानी, इस्तिंजा, ये तो कामिल उस्ताद होता है कि भाई बाना करने वाला कौन और हकीकत में जरूरत वाला कौन, उसका लिहाज रखे। और हमेशा उस्ताद को फिकर में रहना कि मेरे पास आने वाले बच्चे में क्या कमी है और वो कमी की मैं कैसे तलाफी करूं। और देखो कमजोर बच्चों पर खुसूसी ध्यान दो। हमारी मेहनत का मैदान कमजोर बच्चे होने चाहिए। कमजोर बच्चों पर खुसूसी तौर पर तवज्जो और ध्यान देना चाहिए कि वो बच्चा कैसे आगे बढ़ जावे और कैसे वो तरक्की कर जावे। और देखिए अल्लाह ताला से अपने पास पढ़ने वाले बच्चों के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम करो। उस्ताज की दुआ ये बहुत ताकत वाली दुआ है। अल्लाह से ये दुआ करो, ए अल्लाह मैं तो यहां बैठ करके बच्चों को पढ़ा रहा हूं लेकिन इन बच्चों को नफा वाला इल्म आप अता फरमाइए। इसलिए कि असल इल्म तो अल्लाह के यहां से मिलेगा, अच्छे अखलाक तो अल्लाह के यहां से मिलेंगे, उस्ताज तो एक जरिया है। और जो है हमें बच्चों के लिए खूब दुआओं का एहतमाम करना। हमारे एक उस्ताज है नूरानी मकातिब के, उन्होंने गुज़िश्ता साल मन्नत मानी थी। हमारे यहाँ फर्स्ट नंबर को मिसाली तलबा कहा जाता है। तो उस उस्ताद ने मन्नत मानी कि मेरे पास पढ़ने वाले बच्चों में से जितने बच्चे भी मिसाली फर्स्ट कैटेगरी में आएंगे मैं हर एक बच्चे की तरफ से दो दो रकात शुक्राने की नमाज पढ़ूंगा। देखो आज एक बाप और माँ ऐसी मन्नत नहीं मान दे, वो एक उस्ताद ने मन्नत मानी अपने पास पढ़ने वाले बच्चों के लिए और बाकायदा सलातुल हाजा पढ़ पढ़ के दुआएं कर रहे हैं। बहुत से असातिजा दुआ की दरख्वास्त करते हैं, आज बच्चों का इम्तिहान है दुआ कर देना मेरे पास पढ़ने वाले तमाम बच्चे फर्स्ट कैटेगरी में पहले नंबर से पास हो जाए, मिसाली बन जाए। तो उस्ताद की दुआएं ये भी बच्चों की जिंदगी को बना देती है। इसीलिए मैं आप सबको कहता हूं कि बच्चों के लिए खूब दुआओं का एहतमाम करो। जैसे हम सगी औलाद के लिए दुआ करते हैं ऐसे अपने पास पढ़ने वाले बच्चों के लिए दुआओं का एहतमाम करो। सलातुल हाजा पढ़ पढ़ के अल्लाह ताला से मांगो। और देखिए तालीम और पढ़ने पढ़ाने के नए नए तरीके दुनिया में सामने आते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि ये स्कूल कॉलेज के अंदर इनके सेमिनार होते हैं, ट्रेनिंग कैंप होते हैं, बड़े बड़े टीचर्स और प्रोफेसर्स को भी कुछ कुछ वक्त के बाद सेमिनारों में ट्रेनिंग कैंप में जाना होता है। बल्कि आपको मैं बात बतलाऊं, बड़े बड़े डॉक्टर लोग बाकायदा एडवर्टाइज देते हैं कि डॉक्टर साहब 15 दिन अभी नहीं मिलेंगे, क्यों, अमेरिका जा रहे हैं नई ट्रेनिंग लेने के लिए जा रहे हैं। तो वो डॉक्टर साहब तो बाकायदा बोर्ड मार के जा रहे हैं कि मैं नई ट्रेनिंग लेने के लिए अमेरिका जा रहा हूं। और हमारे उस्तादों को कहा जाए कि भाई आपको पढ़ाने का तरीका सीखने के लिए आपको जाना है तो उनको शर्म आती है। वो कहते हैं 25-30 साल से हम पढ़ा रहे हैं, 10-15 साल से पढ़ा रहे हैं, फिर भी हमको जाने का नहीं। भाई नहीं, ये तकब्बुर नहीं होना चाहिए। जहां कहीं भी हमको बच्चों को पढ़ाने का कोई नया तरीका मिले, कोई अच्छा तरीका मिले, उसको सीखो, आसान तरीका सीखो और सीख करके अपने बच्चों को पढ़ाओ। सीखने के लिए जाने को अपने लिए ऐब मत समझो, जरूर सीखने के लिए जाओ, उसको तकब्बुर के अंदर मत ले जाओ। तो इंशाल्लाह आपकी तरक्की होगी। जब दुनिया वाले तरक्की के लिए बार बार ट्रेनिंग में जाते हैं, सेमिनार में जाते हैं, तो हमें भी जाना चाहिए, हमें भी जाना, खुशी खुशी जाना चाहिए। बल्कि हमें खुद माहिरीन से पूछना चाहिए कि कमजोर बच्चों को मैं कैसे पढ़ाऊं, ये बयान कैसे सिखाऊं। ये बहुत जरूरी और अहम तरीन चीज है। और सबसे बड़ी अहम बात मैं बतलाऊं, तमाम असातिज़े किराम किसी न किसी साहिब निस्बत बुजुर्ग से बैत हो जावे और उनकी खिदमत में रह करके अपनी इसलाह करावे। तो इंशाअल्लाहुल अजीज ये तमाम के तमाम काम करने आपके लिए आसान हो जाएंगे। तो एक कामयाब उस्ताद के लिए ये कुछ अहम और जरूरी जरूरी बातें मैंने आपकी खिदमत के अंदर अर्ज की। याद रखो, एक उस्ताद बहुत कीमती होता है। बच्चे की जिंदगी बनने और बिगड़ने की बुनियाद इन बच्चों के इन उस्तादों के ऊपर हुआ करती है। इसीलिए अल्लाह के वास्ते आप लोग एक अच्छे उस्ताद बन जाओ। ये जो मैंने आपको कुछ अहम और जरूरी बातें बतलाई, इसकी रोशनी के अंदर आप लोग अपने आप को तैयार करो। बहुत सी जगहों पर ऐसा होता है कि दरवाजा बंद करके पढ़ाने में फायदा होता है, तो दरवाजा बंद करके पढ़ाइए ताकि बच्चे पूरे ध्यान के साथ पढ़ सके, पूरे तवज्जो के साथ पढ़ सके। तो हालात के एतबार से इसका जायजा ले लेने का। और बोर्ड को आप जरूर जरूर इस्तेमाल कीजिए, बोर्ड। और आप अपने बच्चों के हाथ में भी चौक दीजिए और उसके पास भी बोर्ड के ऊपर लिखवाइए, अमलन मश्क कराइए, तो उसकी बरकत से जो है वो बच्चे बहुत जल्दी आसानी के साथ सीखेंगे। तो बोर्ड का इस्तेमाल करना ये भी कामयाब मुदर्रिस के लिए बहुत जरूरी और अहम बन जाता है। और जो है मुताला, हमारे उस्तादों ने तो ये समझ लिया कि अरबी किताब पढ़ाने वाले मुताला करें, ये बात गलत है। आपको ये मुताला करना है कि सुबह में जो सबक मुझे बच्चों को पढ़ाना है वो मैं कैसे आसानी से बच्चों को पढ़ा दूंगा, उसके लिए आप रात को मुताला कीजिए, तैयारी कीजिए। मुताले का मतलब है कि ये सबक मैं कैसे आसानी से पढ़ा लूंगा, उसके लिए कौन कौन सी मिसालें हो सकती है, उसकी आप रात के अंदर तैयारी कीजिए। इसीलिए हमारे यहाँ नूरानी मकातिब में किताब है बच्चों को पढ़ाने का तरीका। बिरादर मुकर्रम हजरत मौलाना इस्माइल साहब कापोदरवी, जिनको मैं इस दौर के अंदर मकातिब की तालीम का मुजद्दिद कहा करता हूँ, इन्होंने जो है बेहतरीन निसाब मुरतब किया है। तो बच्चों को पढ़ाने का तरीका, उसमें आप जो है पढ़िए कि एक उस्ताद को कैसे तैयारी करने की, तो इस तरीके से आप पूरी तैयारी कीजिए। और जहां जहां भी इसकी तरबियत के सिलसिले हैं उसको आप सीखिए, तो इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। आज ये इंटरनेट का जमाना है, लोग उससे कैसे कैसे फायदे उठा रहे हैं। तो इंटरनेट के ऊपर darulmakatib.com और nuradimakatib.com के ऊपर बच्चों की तालीम तरबियत का बेहतरीन तरीका आपको लाइव और जो है सीखने को मिलेगा। तो उसके जरिए से भी आप सीखिए, आपको जो उलझन होगी वो आप जो है बोल करके भेजिए व्हाट्सएप के जरिए, तो इंशाल्लाह आपकी रहबरी की जाएगी। बहरहाल एक बहुत बड़ा और अहम काम है एक अच्छा उस्ताद, कामिल उस्ताद, अल्लाह के साथ ताल्लुक वाला उस्ताद। कुतुब आलम हमारे सिलसिले के बहुत बड़े बुजुर्ग हजरत मियाँ जी नूर मोहम्मद जिनजानवी रहमतुल्लाह अलैह, ये जो हमारे सारे अकाबिर हैं, हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही, हजरत मौलाना कासिम साहब नानोतवी और उनके भी पीर हजरत हाजी इमदादुल्ला साहब मुहाजिर मक्की, उनके भी पीर होते हैं कुतुब आलम हजरत मियाँ जी नूर मोहम्मद जिनजानवी रहमतुल्लाह अलैह। मियाँ जी यूपी में किसको कहते हैं? ऐसे छोटे छोटे मदरसे में बच्चों को मकतब और नाजिरा पढ़ाने वालों को मियाँ जी कहते हैं। वो मियाँ जी थे, बच्चों को नाजिरा पढ़ाते थे, लेकिन कितने बड़े वली, कितने बड़े कुतुब और अब्दाल थे कि ओ हो अपने जमाने की इमामुल अवलिया थे। खुद शेखुल इस्लाम मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर भारत की सियासी राजधानी दिल्ली है तो रूहानी राजधानी जिंजाना में हजरत मियाँ जी नूर मोहम्मद जिनजानवी की कब्र मुबारक है। इतने बड़े रूहानी इमाम थे। और हजरत अपने पास पढ़ने वाले मकतब के बच्चों को साहिब निस्बत बना देते थे, मकतब ही में साहिब निस्बत बना देते थे। अल्लाहु अकबर। तो आपका काम कोई मामूली नहीं है। अल्लाह वाला बनने का बेहतरीन तरीका जो मैंने शुरू में आयत पढ़ी, वलाकिन कुनु रब्बानीयीन बिमा कुंतुम तुअल्लिमूनल किताब व बिमा कुंतुम तदरुसून। तुम रब्बानी और अल्लाह वाले बन जाओ कुरान मजीद सीखने सिखाने की बरकत से। तो आप जो मकतब में पढ़ाएंगे वो पूरी जिंदगी सदका जारिया है, और देखो बच्चे और बच्चों के माँ बाप से कोई दुनियावी गरज मत रखो। इन्नमानुत इमुकुम लिवजहिल्लाह लानुरीदु मिनकुम जज़ाअं वला शुकूरा। अल्लाह के वास्ते पढ़ाना है, बाकी दुनिया तो आएगी ही आएगी। अल्लाह कुरान के खादिमों को कभी भूखा प्यासा नहीं रखता है, बल्कि इज्जत के साथ रखता है। अल्लाह खजाने गैब से आपकी मेरी जरूरत कुरान की बरकत से जरूर इंशाल्लाह पूरी करेंगे। लेकिन आप इखलास से पढ़ाइए, अल्लाह के वास्ते पढ़ाइए और दुआओं के अहतमाम के साथ पढ़ाइए, इंशाल्लाह नस्लें आपको याद करेगी। मेरे वालिद मरहूम हजरत मौलाना सुलेमान साहब ने 50 साल तक तकरीबन मकतब पढ़ाया और इन्होंने कोई बैरूनी मुल्कों के सफर नहीं किए। एक मरतबा इंग्लैंड चंदे के लिए गए, बाकी हरमैन के हज किए। लेकिन बाद में अल्लाह ताला ने मुझे दीन की निस्बत से पूरी दुनिया में भेजा और चला रहे माशाल्लाह अल्लाह ताला दुनिया के मुल्कों मुल्कों में। तो जहां भी मैं जाता हूँ उनके पास पड़े हुए शागिर्द बड़ी बड़ी उम्र के मुझे मिलते हैं तो फौरन कहते मेरे उस्ताद खैरियत से है, मेरे उस्ताद अच्छे हैं, और उस्ताद के लिए वो हदिया भेजना सआदत समझते हैं। तो आपने मकतब में इन बच्चों की फिक्र की होगी तो ये पूरी जिंदगी आपका एहसान याद रखेंगे और जो है आपके लिए सदकाए जारिया बनेंगे। मैं आपको उस मरहूम की एक बात सुनाकर अपनी बात मुकम्मल कर दूं। जो बच्चा भी मकतब में गैर हाजिर होता था, उस जमाने में लैंडलाइन फोन होते थे, तो वो खुद फोन करते थे कि आज बच्चा आया क्यों नहीं, क्या तकलीफ है, खुद फोन करते थे। फोन के पैसे वो खुद खर्च करते थे और फिर नमाज पढ़ के जब निकलते और बताते कि भाई बच्चा बीमार है तो उस बच्चे के घर जाकर के फूक मारते, दम करते, तावीज लिख करके आते तो और कहते कि बेटा कल सुबह तू मदरसे के अंदर आ जाना। इस कदर फिकर कुड़न के साथ एक एक बच्चे की एक भी गैरहाजिरी न हो उसकी फिकर करते। अल्लाह ताला हम सबको कामयाब मुदरिस बना दे और आखिरत के अंदर कुरान के खादिमों में अल्लाह हम सबका शुमार फरमावे। अहलुल कुरान हुम अहलुल्लाह, कुरान के खादिम वो अल्लाह के घर वाले हैं, अल्लाह की फैमिली के मेंबर है। हम सब कुरान के खादिम हैं, हम सब अल्लाह के घर के लोग हैं। बस इस चीज को हमेशा सामने रखो। अल्लाह ताला हम सबको जिंदगी की आखिरी घड़ी तक कुरान मजीद की मकबूल खिदमात के लिए कबूल फरमा ले। वाखिरु दावाना अनिलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।